स्वामी रचित तत्वार सूत्र का ये द्वितीय अध्याय चल रहा है। उसमें पांच भावों संबंधी अपनी चर्चा चल रही है। ये जो जीव के पांच असाधारण भाव है, उसमें हमने देखा कि पारिणामिक भाव जीव का स्वभाव भाव है, उसमें कोई कर्मों की अपेक्षा नहीं लगती। किसी कर्म के कारण से वे भाव नहीं है, वो अनादि अनंत जीव में पाए जाते हैं, उसको जीव का स्वभाव कहेंगे हम। अन्य जो भाव है उसमें कर्मों की अपेक्षा लगती है, और ये जो नाम दिए उनको औपशमिक, शायिक, शावशमिक या औदयिक, ये कर्मों की कौन सी अवस्था है उस अपेक्षा से नाम दिए हैं। कर्म वो भाव कराते हैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जीव के भाव यानी ये जो चार है वे पर्याय रूप भाव है। जीव की पर्याय उसकी अपनी योग्यता से स्वयं में होती है। उस समय कर्मों की अवस्था कैसी है ये समझाने के लिए वो कर्म की अवस्था का नाम देकर उसको समझाया है। देखो हम कहते हैं ना, शरीर और शारीरिक शब्द तैयार हुआ ना। हाँ हाँ, आप संस्कृत के हैं ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं संस्कृत सिखाते भी है और बहुत उसके जानने वाले हैं। तो जैसे शरीर शब्द से शारीरिक शब्द तैयार हुआ, मन से मानसिक शब्द तैयार हुआ, वैसे उपशम से औपशमिक ये शब्द तैयार होता है। कर्म में तो उपशम होता है और जीव में जो भाव है उसको कहते हैं औपशमिक भाव। कर्म उसको कुछ नहीं करता है, कर्म ने वो भाव तैयार नहीं कराया है, परंतु जिस समय जीव में औपशमिक सम्यक तो पाया जाता है उसी समय कर्म की ओर हम देखेंगे तो कर्म में वहां सामने दर्शन मुनि अनंतानुबंधी का उपशम पाया जाता है। जीव में जब औपशमिक चारित्र पाया जाता है ग्यारहवें गुण स्थान में, तो सामने कर्म की अवस्था कैसी पाई जाती है, तो चारित्र मुनि का वहां पूर्ण उपशम पाया जाता है, इसलिए उसका नाम औपशमिक है। यहां बोर्ड पर भी लिखा है, हमें अभी देखा। क्षायिक भाव में भी ऐसा है। तो क्षायिक ज्ञान किसको कहते हैं? हाँ पीछे कोई उत्तर दे। अरुणा बेन, आप पीछे वाले अरुणा बेन बोलो। क्षायिक ज्ञान किसको कहते हैं? हाँ बेन, क्षायिक ज्ञान नहीं नहीं, वो किसके, उस ज्ञान को दूसरा नाम क्या है? क्षायिक ज्ञान का दूसरा कुछ नाम है कि नहीं? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान है वो, क्षायिक ज्ञान है। तो कौन से ज्ञानावरण का वहां क्षय पाया जाता है बोलो? बहुत अच्छा, पांचों। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञानावरण का क्षय हुआ है और मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण अभी है बाकी, ऐसा नहीं होता। पांचों ही ज्ञानावरणों का क्षय होता है और वहां केवल ज्ञान पाया जाता है। ऐसे ही क्षायिक दर्शन जिसको हम केवल दर्शन कहते हैं, वहां दर्शनावरण के सभी कर्म जो है, कितने हैं दर्शनावरण के कर्म? वहां तो नौ लिखे है। कौन से नौ है? हमें चार दर्शन मालूम है, दर्शन चार मालूम है ना। हाँ, कौन कौन से पर्याय दर्शन की? चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। दर्शन तो चार ही है और दर्शनावरण नौ है। और पांच कौन से हैं? निद्रा, प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि। निद्रा संबंधी जो यानी तरल निद्रा से गाढ़ निद्रा तक के ये जो वेरिएशंस है उसके, ये निद्रा नाम के जो कर्म है वो भी दर्शनावरण कर्म है। उसके उदय में यहां निद्रा आती है। तो इन सभी कर्मों का पूर्ण क्षय हो जाता है, पूर्ण नाश होता है और वहां केवल दर्शन उत्पन्न होता है। अभी उसका क्षय किस पोजीशन पे किस किस का होता है वो अलग बात है, परंतु हमें समझने के लिए इतनी बात काफी है अभी। और क्षायिक भाव कौन से हमने देखे थे? क्षायिक सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व के जो प्रतिपक्षी कर्म है उसका पूर्ण क्षय होता है। तो सम्यक्त्व के प्रतिपक्षी कर्म कौन कौन से हैं? एक तो है दर्शन मोहनी कर्म और चारित्र मोहनी का कौन सा? अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी चार और दर्शन मोहनी के तीन कर्म देखो उसमें से सम्यक प्रकृति तो प्रतिपक्षी नहीं है, फिर भी सम्यक प्रकृति का उदय चलता रहे तो हम उसको वेदक सम्यक तो कहेंगे। तो क्षायिक सम्यक तो के लिए उसका भी पूर्ण नाश पूर्ण क्षय होता है और होना चाहिए। तो दर्शन मुनि के 3 और अनंतानुबंधी 4 इनका पूर्ण क्षय होता है और क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। क्षायिक सम्यक्त्व में चारित्र मोहनीय का पूर्ण क्षय हो जाता है और वहां क्षायिक चारित्र उत्पन्न होता है। और नीचे जो क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य है उस नाम के जो 5 ही अंतराय कर्म है उनका क्षय होने पर वे क्षायिक भाव प्रकट होते हैं। अब हम थोड़ी क्षायोपशमिक भावों की चर्चा करेंगे। आज पहली बार सुनने वालों को थोड़ा थोड़ा जरा डिफिकल्ट जा रहा है क्योंकि हम बार बार गए 2-3 दिन से इसी को रिपीट कर रहे हैं ना। तो आप भी कल तक इसके साथ यानी फैमिलियर हो जाएंगे तो कोई बात नहीं होगी। आगे के पेज पर हम क्षायोपशमिक भाव देखेंगे, वो कौन से कर्म के क्षयोपशम से क्षायोपशमिक भाव होते हैं उसकी बात हम देखेंगे। हाँ देखो, क्षायोपशमिक भाव हमने 18 क्षायोपशमिक भाव देखे थे। जीव में क्षायोपशमिक भाव है तो सामने कर्मों की कौन सी अवस्था चल रही है? हाँ कल्याबेन, कर्म की वहां ऊपर लिखा ना, कर्म का क्षयोपशम, क्षय और उपशम। तो आप कहेंगे क्षय हो गए तो क्षायिक कहना चाहिए, है ना? तो ये क्षय वाला जो है वो पूर्ण नाश को यहाँ क्षय नहीं करते। कर्म की कैसी अवस्था होती है तो देखो, थोड़ा हम बहुत मामूली सी बात हम देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। कर्म मूल 2 प्रकार के होते हैं, पता है किसी को? हाँ, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म के भी और 2 विभाग करते हम, उसमें कहेंगे देशघाती और सर्वघाती। घाती का अर्थ क्या है? कुछ घात हो रहा है। किसका घात होगा? आत्मा का, तो आत्मा नष्ट हो जाएगा। गुणों का घात है, अनंत गुण में से 4 गुण नष्ट हो जाएंगे, बरोबर नहीं होगा? अच्छा, तो क्या होगा? हाँ आवरण है, मगर घात किसका कर रहा है? गुण का के पर्याय का? पर्याय का घात, यानी उत्पाद व्यय रहित हो जाएगा द्रव्य। हाँ, जो स्वभाव है पर्याय में प्रकट नहीं होने देना। देखो ज्ञानावरण है ना, ज्ञान के ऊपर आवरण, जानना बंद नहीं होता है, यानी पूर्ण केवल ज्ञान रूप स्वभाव है तो अभी अल्प जानता है, पूरा का पूरा जान नहीं सकता, थोड़ा जानता है। जानना तो स्वभाव है, वो थोड़ा प्रकट है ही है, परंतु वो जानने के ऊपर मान लेते हम इतनी उसके ज्ञान की कैपेसिटी है, तो अभी पर्याय में इतना ही ज्ञान हमारा प्रकट है, तो क्या कहते हम, बाकी ज्ञान क्या हुआ? ढक गया, उसके ऊपर आवरण आ गया। ये कहने की पद्धति है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान प्रकट है, केवल ज्ञान है पर्याय में और ऊपर आवरण आया है, ऐसा है नहीं। पर्याय में उतना ज्ञान प्रकट ही नहीं है, उसको कहेंगे हम वहां ये ज्ञान थोड़ा प्रकट है और बाकी अप्रकट है। तो प्रकट और अप्रकट ऐसी जो अवस्था है उसको कहते हैं क्षयोपशम। क्या कहते हैं? क्षयोपशम कहते हैं। अब हमने 2 प्रकार देखे थे अभी, देशघाती और सर्वघाती। देखो अभी हम ज्ञानावरण पर घटित करते हैं। ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं, आपने किसी ने सुनी है उनके नाम? 5 प्रकार के ज्ञान के पर्याय है ना, आवरण के भी वे ही नाम है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, आवरण शब्द लगा लो, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। तो हमने क्षायिक भाव में देखा था केवल ज्ञान कब होता है? 5 ही ज्ञानावरण का क्षय होने पर होता है, बराबर। अब ये जो केवल ज्ञानावरण प्रकृति है ना, उसको कहते हैं सर्वघाती प्रकृति। सर्वघाती प्रकृति की डेफिनेशन ऐसी है, वो प्रकृति ऐसी है अपने प्रतिपक्ष का पूरा घात करती है। किसका घात करते हैं? ज्ञान का नहीं, अपने प्रतिपक्ष। केवल ज्ञानावरण का प्रतिपक्षी कौन है? केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञानावरण केवल ज्ञान तो प्रकट नहीं होने देता, परंतु क्या केवल ज्ञान आवरण का उदय मति ज्ञान को रोक सकता है? अभी हमारा केवल ज्ञान आवरण का उदय चल रहा है ना, तो केवल ज्ञान है ही नहीं पर्याय में। तो केवल ज्ञान आवरण का उदय चल रहा है तो पर्याय में मति श्रुत ज्ञान प्रकट है कि नहीं है? तो केवल ज्ञान आवरण किसको रोक रहा है? अकेले केवल ज्ञान को रोक रहा है। तो वो कैसा है? पूरा रोक रहा है कि थोड़ा केवल ज्ञान प्रकट है हमारा? पूरा ढका है। तो उसको हम कहेंगे सर्वघाती प्रकृति है। अब रिमेनिंग चार में से हम एक का ही उदाहरण लेंगे, हर एक में ये लागू होगा। मति ज्ञानावरण ये प्रकृति कैसी है? देशघाती प्रकृति है। देशघाती का अर्थ क्या है? जैसे हमने ओढ़ने, ये क्या कहते हैं आप, चादर ओढ़ी, क्या कहते हैं उसको, चादर ओढ़ते हैं ना, छोटी होगी, हम है 5 फुट के और हमने 4 फुट की ली या 3 फुट की ली, तो क्या होगा? सिर ढकते तो पैर खुले और नीचे पैर ढके तो सिर खुला, पूरा ढक नहीं सकते। ऐसे देशघाती का आवरण कैसा है? पूरा ढक नहीं सकता है। तो अभी 3 के बदले 4 फुट लेगी तो और थोड़ा ज्यादा ढक जाएगा, और 2 फुट की लेगी तो ज्यादा खुला रहेगा, थोड़ा ही ढका रहेगा। ऐसे देशघाती में भी आवरण अधिक है तो उघाड़ कम, आवरण ज्यादा है तो उघाड़ कम, और आवरण कम हो जाएगा तो उघाड़ ज्यादा। ये जो पोजीशन है देशघाती में, इसको कहते हैं क्षयोपशम। अपने यहां अभी हमारा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान उघाड़ रूप चल रहा है, ज्ञान हो रहा है ना, निगोद जीव को भी थोड़ा ना थोड़ा मति श्रुत ज्ञान चलता ही है। तो क्या है वहां पर? मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम चल रहा है। तो हमारे आप सबके 12वें गुणस्थान तक के जीवों का जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, किसी जीव को अवधि मन परे ज्ञान भी है, तो उनका ये ज्ञान कौन सा भाव है? हम कहेंगे यहां लिखा है बोर्ड पर, उसको क्षयोपशमिक भाव या क्षयोपशमिक ज्ञान कहते हैं, बराबर। और वहां कर्मों की अवस्था क्या हो रही है? कर्मों का क्षयोपशम हो रहा है। ऐसे ही 3 जो अज्ञान है, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, उसमें भी ऐसा ही समझना कि ज्ञानावरण कर्म का क्षोपशम है। दर्शन में भी दर्शनावरण के जो देशघाती है, देखो इसमें सर्वघाती को नहीं लिया है, जहां जहां क्षोपशम शब्द आया है वहां केवल ज्ञानावरण का क्षोपशम नहीं होता। कभी भी थोड़ा केवल ज्ञान प्रकट है और बाकी का ढका हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। ये जो क्षोपशम शब्द लगेगा वो मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण, इन 4 ज्ञानों को क्षोपशम ज्ञान ऐसा भी कहते हैं। ऐसे ही दर्शन में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये जो 3 भाव है उनको क्षयोपशमिक भाव कहते हैं, क्योंकि उनके जो अपोजिट कर्म है उनका क्षयोपशम पाया जाता है, परंतु केवल दर्शनावरण का क्षयोपशम नहीं होता। बात ख्याल में आती है? इसलिए वहां 3 ही दर्शन को लिया है। ऐसे ही वहां दर्शनावरण कर्म निद्रा है, निद्रा का या तो उदय होगा या तो क्षय होगा, तो उसको उसमें नहीं लिया है क्षयोपशम भाव में। दानादि के बारे में ऐसा ही समझना, अनादि से लेकर 12वें गुणस्थान के अंतिम समय तक अंतराय कर्म का क्षयोपशम पाया जाता है, और उसके निमित्त से होने वाले जो 5 भाव है, ये दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये भी उनका क्षयोपशम पाया जाता है। अब बारी है क्षयोपशम सम्यक्त्व की। हमने औपशमिक सम्यक्त्व की बात देखी थी, अब क्षयोपशम सम्यक्त्व किसे कहना? तो हमने देखा था जब किसी जीव को सबसे पहले औपशमिक सम्यक्त्व होता है तो उसके सत्ता में जो मिथ्यात्व कर्म है अब वो दबा हुआ है। दबे हुए अवस्था में उसके 3 विभाग होते हैं, उसका अनुभाग हीन होकर और 2 प्रकृतियां तैयार हो जाती हैं। एक मिथ्यात्व प्रकृति है, एक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है और एक सम्यक प्रकृति है। इनमें से एक क्षयोपशम सम्यक्त्व हमको समझना है। 3 में से सम्यक प्रकृति का उदय रहता है और ये 2 प्रकृति सत्ता में ही दबी रहती है। कौन सी 2? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। और सम्यक प्रकृति का उदय चलता रहता है तो उसको कहते हैं क्षयोपशम सम्यक्त्व। अभी तो हम इतना ही समझेंगे, गुणस्थान के जब चर्चा चलेगी उसमें और डिटेल आ जाएगी बात। तो ये क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है। दूसरा संयमा संयम लिखा है जो पांचवें गुणस्थान वाले को होता है, वहां भी जो अप्रत्याख्यानावरण और अनंतानुबंधी का उदय नहीं है और प्रत्याख्यानावरण संज्वलन का उदय है, उसमें भी देशघाती सर्वघाती का ऐसा क्षोभशम बनता है। इतना ही अभी समझेंगे। और जो है सराग चारित्र जिसको कहते हैं या क्षोभशमिक चारित्र जिसको कहते हैं, वहां भी संज्वलन के जो स्पर्धक होते हैं उसके जो अनुभाग की विशेषता होती है उसमें भी क्षोभशम पाया जाता है। यानी ये सारे क्षोभशमिक भाव हमने देखे हैं। औदयिक भाव की हमने सुबह चर्चा की ही थी, थोड़ा अभी दोबारा देख लेते हैं। यह औदयिक भाव, औदयिक शब्द कैसा तैयार हुआ? जैसे शरीर से शारीरिक हुआ, तो कौन से शब्द से औदयिक शब्द तैयार हुआ? उदय। कर्म में उदय है और जीव में औदयिक भाव है। तो हमने सुबह से चर्चा की थी ये सारे औदयिक भावों की, गति, कषाय, वेद, और फिर लेशा की भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी, योग को भी देखा था। अब उसके नीचे जो मिथ्यात्व, तो असंयम, अज्ञान और असिद्धत्व है, वहां कौन कौन से कर्मों का उदय है उसकी बात हम देखेंगे। मिथ्यात्व नाम का जो जीव का भाव है, देखो मिथ्यात्व कर्म का भी नाम है और मिथ्यात्व नाम का जीव का भी भाव है। तो जीव की जो अवस्था है वो मिथ्यात्व है और कर्म जो है वो कर्म की अवस्था है। तो मिथ्यात्व कर्म का उदय, और यहां जीव में कौन सा भाव चल रहा है? मिथ्यात्व, जिसको हम कहते हैं अतत्व श्रद्धान। आपने सुना है ना, कल बात आई थी गुणस्थान के प्रकरण में, तत्व का जो तत्व जैसे है उसको वैसे नहीं मानना, उल्टे मानना, शरीर को ही मैं हूं मानना, और अन्य अन्य हमने बहुत जो डिटेल देखी थी, ऐसा वाला जो जीव का भाव है, ऐसा जो जीव का परिणाम है, वहां तब सामने मिथ्यात्व कर्म का उदय पाया जाता है। इसलिए मिथ्यात्व को औदयिक भाव कहते हैं। दूसरा वहां कौन सा लिखा है? असंयम है ना, असंयम कहो या अविरत कहो। आपने गुणस्थानों के जो विभाजन अलग अलग क्राइटेरिया से देखे थे उसमें अविरत भाव कहां तक देखा था? हाँ शिल्पा जी, चौथे गुणस्थान तक। पहले गुणस्थान वाला भी अव्रति है, अविरत यानी अव्रति यानी असंयमी। दूसरे गुणस्थान वाला, तीसरे वाला और चौथे वाला, चारों गुणस्थान वाले कैसे है? अव्रति है, असंयमी है, थोड़े भी व्रत नहीं होने देते, ऐसे कोई कर्म का उदय चल रहा है। चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन तो हुआ परंतु अभी व्रत नहीं हो देने वाले कोई नहीं होने देने वाले कोई कर्म का उदय चल रहा है। तो चौथे गुणस्थान में ऐसे कौन से कर्म का उदय है जो जीव को अणुमात्र भी व्रत नहीं होने देते, अणुव्रत भी नहीं होने देते? बोलो। अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय, जो मिथ्या दृष्टि को भी उदय, जहां हम कहते ना मिथ्या दृष्टि को चारों कषाय चौकड़ी का उदय है, कौन से? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। जो मुखिया है उसका नाम लिया जाता है। जहां अनंतानुबंधी का उदय कहते हैं हम, तो बाकी जो सारे तीन है वो अनंतानुबंधी जैसे बिहेवियर करते हैं। बाहर बच्चे बहुत उधम मचा रहे हैं तो उसमें से एक बच्चा ज्यादा उधम मचाता है तो उसके साथ है तो बाकी सभी उतनी ही उधम मचाते हैं। अब उसको एक को बाहर निकालो तो बाकी थोड़े जरा शांत होते हैं। ऐसे ही अनंतानुबंधी के उदय में ऐसा कोई कहना नहीं हम मिथ्या दृष्टि है परंतु हमारे संज्वलन का उदय है इसलिए हमारे मंद परिणाम, ऐसा नहीं। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में भी जहां मंद कषाय रूप भाव होते हैं, जैसे द्रव्यलिंगी होकर ग्रैवेक में भी जाते हैं शुक्ल लेशा वाले, फिर भी वो अनंतानुबंधी ही कषाय है। क्यों? अनंतानुबंधी की जाति कैसे पहचानना? कि जो सम्यक तो नहीं होने देते वो अनंतानुबंधी है, उसके साथ वो बाकी भी है ही वहां पर। तो सम्यक तो नहीं होने देते तो वहां मिथ्या चारित्र चल रहा है, तो अविरति वहां है ही है। अब ये सम्यक तो हुआ, अभी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन तीन कषाय बाकी है। अब ये जीव की पोजीशन ऐसी है, सम्यक तो हुआ है परंतु उसको अनुमात्र व्रत नहीं होते हैं, यानी उसके अनुव्रत धारण करने के भी परिणाम नहीं होते, तो ये अप्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है। श्रेणिक राजा ने कितने व्रत लिए थे, श्रावकोत्तम कहा था उसको, उसने कुछ व्रत लिए कि आपको क्या मालूम नहीं लिए थे? शायद समय तो था, हाँ उसके अनुसार व्रत होंगे कि नहीं होंगे, तो उनको अविरत कहेंगे क्या अनुव्रति कहेंगे? श्रेणिक राजा की पर्याय में उस जीव को हम अनुव्रति कह सकते कि नहीं सकते? हाँ, चौथे में थे कि पांचवे, हमको क्या पता? निर्णय तो करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, देखो जिसके नरकायु, मनुष्यायु या तिर्यंचायु का बंध ऑलरेडी हो जाता है, उस जीव को चौथे गुणस्थान के आगे का पुरुषार्थ होता ही नहीं, बिल्कुल वो उसके अनुव्रत के भी परिणाम नहीं होते, वो उसको पांचवा गुणस्थान भी नहीं प्राप्त होता। तो भले उसको शास्त्र में श्रावकोत्तम भी कहा था, फिर भी अभी वो नरकायु का बंध ऑलरेडी हुआ था तो वो चौथे गुणस्थान वाला ही जीव था। हाल में आए ना, मनुष्यायु का भी बंध किया हो तो भी उसके व्रत के परिणाम नहीं होते, या तो आयु का बंध नहीं किया हो या देवायु का बंध किया हो, उस जीव को पांचवा गुणस्थान और मुनि के गुणस्थान आ सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ऐसे ये कर्णानियुक्त के विशिष्ट नियम होते हैं। बोलो, देवायु का बंध किया हो या अभी उसी भाव में मोक्ष जाने वाला हो, आयु का बंध ही नहीं किया हो, बाद में करने वाला हो, एक बार पांचवा गुणस्थान हो गया, छठा सातवां हो गया और बाद में आयु का बंध किया, तो भी देवायु का ही करेगा, या तो पहले करेगा या बाद में करेगा या नहीं भी करेगा और उसी भाव में मोक्ष चला जाएगा। ख्याल है ता? हाँ, क्या प्रश्न है?
देवलोक में जाते हैं तो फिर वो उनका अनुव्रत, वो व्रत चालू रहते हैं?
हाँ हाँ हाँ, आपका प्रश्न है अनुव्रति है या कोई मुनिराज है तो देव में चले जाते तो उनके अनुव्रत चालू रहते हैं कि नहीं रहते? हाँ, कोई प्रश्न उत्तर देना? हाँ, क्यों नहीं रहते? देवों में चौथा ही गुणस्थान है मैक्सिमम, देवगति में चार ही गुणस्थान होते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। व्रत, हाँ, ये उनके अभी यहाँ जो व्रती थे ना, जो कोई अनुव्रती थे, उनके दो कषाय चोकड़ी का उदय था, दो कषाय का अनुदय था, देव पर्याय में जाते विग्रह गति से ही उनके तीन कषाय चोकड़ी का उदय चालू हो जाता है। सर्वार सिद्धि में हो, सब नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं सर्वार सिद्धि वाले, बिल्कुल नहीं, उनके भी गुणस्थान चौथा, वे सभी असंयमी है, अविरत सम्यक दृष्टि है, वो भले 33 सागर की आयु है और 33,000 वर्षों के बाद भूख लगती है और फिर वो कंठ से अमृत झरता है, तो इतना उपवास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, नियति बेन, हाँ बोला, उपवास हुआ ना, तो तप हुआ कि नहीं, निर्जरा हुई कि नहीं, होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि है,
खाने का भाव
नहीं आया, खाने का भाव क्यों, वहाँ होता ही नहीं है, ऐसा नियम ही है वहाँ का, तो उनका गुणस्थान कौन सा रहेगा? चौथा। तो चौथे गुणस्थान के योग्य निर्जरा होगी क्या, मुनि योग्य निर्जरा होगी? तो उपवास से निर्जरा होती कि नहीं होती? उपवास से नहीं होती, जो सम्य दृष्टि जीव है या मुनिराज है, पांचवे गुणस्थान वाले हैं, अंतरंग में स्थिरता अधिक अधिक होती है तो उसके कारण ज्ञानी के निर्जरा होती है, और वो भी वहां चौथे गुणस्थान के योग्य निर्जरा चल रही है। देखो, कोई यहाँ सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि है या ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती जो है और मरकर वहां चौथे गुणस्थान में गए सर्वार सिद्धि में, तो ग्यारहवें गुणस्थान में तो कितनी निर्जरा होती थी और वहां चौथे में जाने पर निर्जरा कितनी कम हो गई? गुणस्थान के अनुसार जितनी वितरागता है उतनी निर्जरा होती है, शुभ भावों से निर्जरा होती ही नहीं, बिल्कुल नहीं। परंतु वीतरागता के साथ साथ जो पुण्य भाव है उस पर आरोप आता है कि इसके कारण भी निर्जरा होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे असंयम के बाद। हाँ, आपका प्रश्न है जो सम्यक्त्व के साथ देव में जाते हैं क्या उसकी निर्जरा होती है कि नहीं होती। सम्यक दर्शन शुरू होते ही संवर और निर्जरा चालू है। संवर कितना किसको कहेंगे, 41 प्रकृतियों का जो बंध मिट गया है उतना तो संवर है, उतने तक कर्म का बंध रुक गया है, यहां शुद्धि की उत्पत्ति हो गई है। अब वो शुद्धि की वृद्धि भी होती रहती है यथायोग्य, तो वहां भी वो कर्मों की निर्जरा गुणश्रेणी निर्जरा नहीं होगी परंतु उसको अलग नाम है, तो उतनी प्रमाण में उनकी निर्जरा चलती है। सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाला उसको आश्रव है कि नहीं है, आप कहते हैं वहां सुख के इतने साधन हैं तो क्या उनको आश्रव ज्यादा होते हैं। तो आपने अच्छा कहा, तो इंडिया से अमेरिका में आश्रव ज्यादा होता होगा। संयोगों में से कोई आश्रव नहीं होता है, जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम है उसके कारण आश्रय होता है। जो सम्यक दृष्टि है उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म आना रुक गया है, उसका उदय रुक गया है, उसका बंध भी रुक गया है, तो उस संबंधी न मिथ्यात्व का आश्रय है न अनंतानुबंधी का आश्रय है, और उसके साथ बंधने वाली जो अन्य प्रकृति टोटल जिसकी 41 संख्या है उसका भी आश्रय उनको मिट गया है, उतना तो संवर है। और ये सभी कर्मों की आयु छोड़कर अन्य सभी कर्मों की निर्जरा होती है। जब हम निर्जरा करते हैं तो नॉट ओनली वो मोहनी की निर्जरा चल रही है, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय सभी कर्मों की निर्जरा चलती है और वो सम्यक दृष्टि के भी होती है। अज्ञानी के ऐसी मोक्ष मार्गों वाली निर्जरा तीन काल में नहीं होती, ये बिल्कुल गारंटी। कितना भी उच्च प्रकार का शुभ भाव क्यों न हो, मुनि जैसा भी आचरण क्यों न हो, उनके निर्जरा होती ही नहीं। ख्याल आया? हाँ। अब आगे ये अज्ञान नाम, यहां भी अज्ञान लिखा है, आपका प्रश्न था ना रजनी भाई, और अभी हमने जो क्षोभम भाव देखे थे उसमें भी तीन कुज्ञान देखे थे, उसको अज्ञान भी कहने में आता है। ये अज्ञान वाला औदयिक भाव किसको कहना, तो कर्म के उदय में जो अज्ञान है, जो अभाव रूप ज्ञान है उसको अज्ञान कहा, और जो क्षोभम में अज्ञान कहा था वो कुज्ञान जो प्रकट था, जो प्रकट ज्ञान का उघाड़ है ना अज्ञानी जीवों का, कुमति कुश्रुत ज्ञान जितना प्रकट है अभी निगोद वाले जीव को, जितना ज्ञान प्रकट है उसका कुज्ञान है, उसको हम क्या कहेंगे, क्षोभमिक अज्ञान। बराबर, अभी हमें जितना अवधि ज्ञान है क्या, नहीं है हमें अवधि ज्ञान है क्या, आपको होगा शायद, मुझे तो नहीं है। हाँ, मन परे ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, तो वहां कर्मों का उदय चल रहा है, अवधि ज्ञानावरण का उदय है, मन परे ज्ञानावरण का उदय है, हमारे केवल ज्ञानावरण का उदय है। अब ये जो देशघाती है ना मति ज्ञानावरण, उसमें भी अधिक आवरण है, जितना ज्ञान प्रकट नहीं है उसको हम औदयिक अज्ञान कहेंगे, और जो प्रकट ज्ञान है उसको क्षाउक्षमिक ज्ञान कहेंगे। परंतु क्षाउक्षमिक ज्ञान में कुज्ञान भी हो सकता है और सम्यक ज्ञान भी हो सकता है, ऐसे दो भेद उसमें होते हैं। अब जो असिद्धत्व है, तो असिद्धत्व किसको किसको है, हाँ कौन से गुणस्थान में है असिद्धत्व, हाँ पहले में, हाँ आप क्या कहते हैं, 1 से 13, हाँ और 1 से 14, एक एक बढ़ रहा है अभी अभी कौन सा बढ़ रहा है, जो सिद्ध नहीं है उनके असिद्धत्व है। तो 1 से 14 गुणस्थान तक, 14 गुणस्थान वाला सिद्ध है कि नहीं है, नहीं हुआ अभी, उसके 4 अभी अघाती कर्म बाकी है ना। तो जब तक कर्म का, किसी भी कर्म का सद्भाव है, उदय है, तब तक सिद्ध दशा प्रकट नहीं होती, इसको असिद्धत्व कहते हैं। इस प्रकार ये सारे औदयिक भाव हमने देखे, जहां कर्म का उदय निमित्त रूप से कहा जाता है, ऐसे जो जीव के अपने औदयिक उसके स्वयं के कारण होते हैं। यहां भले सामने कर्म का निमित्त है निमित्त कार्य में कुछ नहीं कहता करता, ये हमें पहले में पहले नियम ध्यान में रखना है। जो कुछ जीव की अवस्था होती है जीव के अपने उपादान से होती है, तो ये पर्याय में उसके जो विकार रूप औदयिक भाव है वो उसके अपने कारण से है, और जो स्वभाव की यानी पारिणामिक भाव की दृष्टि करता है, उसकी श्रद्धा करता है, उस पर ज्ञान केंद्रित करता है, तो पर्याय में वो शुद्ध भाव प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो यही हमें इसमें से समझना है। देखिए आपके पास जो 181 पृष्ठ नंबर 181 नीचे के 3-4 लाइन वहां लिखा है औपशमिक भाव कब होता है। देखो हम पढ़ते हैं, अध्याय 1 सूत्र 32 में कहा गया है कि जीव के सत्य और असत के विवेक से रहित तो दो दशा है वो उन्मत्त जैसी है। उन्मत्त यानी पागल जैसी दशा है। किसको कहे पागल जैसा? मिथ्या दृष्टि जीव को। क्यों? ये सच क्या है झूठ क्या है कुछ नहीं समझता है, सत क्या है असत क्या है इसकी उसको पहचान नहीं है। मिथ्या अभिप्राय ने खोटी श्रद्धा, मिथ्या अभिप्राय से अपनी ऐसी दशा अनादि काल से है। यह अध्याय 104 में कथित तत्वों का विचार करने पर जीव को ज्ञान में आता है, यानी हमारी भी ऐसी ही दशा अनादि से है यह बात जीव को पता चलती है। जब सच्चा उपदेश सुनता है तो ख्याल में आता है, अरे मैंने तो अभी तक इसको सुना ही नहीं था, ये ऐसे अद्भुत तत्व है और मैं क्या क्या मान रहा था। क्योंकि जिस कुटुंब में हम जन्मते हैं, जैसे हमारे आजू बाजू के जो संस्कार होते हैं, तो उस रूप हम विचार करते हैं, और कभी कोई ज्ञानी का ग्रंथ हाथ में आता है, कोई विचार हम सुनते हैं या उसका उपदेश सुनते हैं, तो पता चलता है नहीं ये सच्चा धर्म कोई अलग बात है, और हम जो आज तक मानते आ रहे थे वो कोई अलग बात थी। ये तत्वों का अभ्यास से ही, ये तत्व ज्ञान से ही धर्म की शुरुआत होती है। तो अंदर से अपनी फीलिंग हो जाती कि नहीं ये सत्य मार्ग है और मुझे इसी को अपनाना है। तो कहते ये ज्ञान में आता है, और उसे यह भी ज्ञान में आता है कि जीव का पुद्गल कर्म तथा शरीर के साथ प्रवाह रूप से अनादिकालीन संबंध है। जीव का और शरीर का, जीव का और कर्म का अनादि से ही संबंध है। तो क्या वही शरीर अनादि से है हमारे साथ? नहीं ना, अभी ये मनुष्य शरीर इस भव की देन है, और जो अभी जो कर्म है वो भी नए नए आए हुए हैं। अनादि से वही के वही कर्म नहीं है और वही का वही शरीर नहीं है। नए नए कर्म आते रहते हैं और पुराने में से कर्म निकलते जाते हैं, और उसका प्रवाह जो है वो अनादि से बना है, इसलिए कहा प्रवाह रूप से। अर्थात जीव स्वयं वही का वही है। ये जो कर्म का भी संबंध है और शरीर का भी संबंध है, इसमें कांस्टेंट कौन है? मैं स्वयं, मैं तो वही का वही हूँ, शाश्वत हूँ। जब शाश्वत अकृत्रिम चैत्यालय की पूजा करते हैं ना, तो बहुत बहुमान आता है कि कैसा होगा, किसी ने बनाया नहीं उस मूर्ति को, अनादि से ऐसे रत्नों की वो मूर्ति है, और हमें किसने बनाया है? किसी ने। तो हम शाश्वत नहीं है, हम अकृत्रिम नहीं है क्या? तो हम स्वयं अकृत्रिम और शाश्वत है, तो हमें तो अपनी महिमा कभी आई नहीं ना, पर की महिमा आती है। तो कहते हैं जीव स्वयं वही का वही है, किंतु कर्म और शरीर पुराने जाते हैं तथा नए आते हैं। और यह संयोग संबंध, देखो ये संबंध और एक टाइप का संबंध आया है। कौन सा संबंध का आया? कल हमने तीन संबंध देखे थे, कौन से? एक क्षेत्रावगाह संबंध, नित्य तादात्म्य संबंध और अनित्य तादात्म्य संबंध। अब यहाँ कहते हैं संयोग संबंध, ये जो एक क्षेत्रावगाह में भी है उनके साथ भी हमारा कैसा संबंध है? संयोग है। तो जिसका जिसका संयोग है उसका उसका वियोग होता है, और हम दुख काहे का करते हैं? वियोग का, और आनंद मानते हैं संयोग का। और ये संयोग संबंध अनादिकाल से चला रहा है। जीव इस संयोग संबंध को एक रूप मानता है। क्या माना उसने? तादात्म्य माना। तादात्म्य किसके साथ होता है जीव का या द्रव्य का? या तो गुणों के साथ नित्य तादात्म्य होता है, तादात्म्य ने एक रूप पना, एक मेक पना, या अपने गुणों के साथ नित्य तादात्म्य होगा या पर्याय के साथ अनित्य तादात्म्य होगा। राग द्वेष के साथ हमारा कौन सा संबंध है? हाँ, नित्य का अनित्य, अनित्य एक समय की पर्याय है ना वो, परंतु जितने काल तक है तब तक एकमेक है। हम कहते हैं ये क्रोधी जीव है, ये मिथ्या दृष्टि जीव है, ऐसा जब कहते हैं वो पर्याय के साथ वो तादात्म्य है। इसने तादात्म्य किसके साथ माना जीव ने अभी तक? पुद्गल के साथ, पर्याय के साथ भी नहीं माना, अपनी पर्याय को भी नहीं पहचाना है उसने। ये तो शरीर की अवस्था को अपनी पर्याय माना है। हम मानते हैं हम गोरे हैं, काले हैं, या ठीने हैं, ऊंचे हैं, जो कुछ है। क्यों? अभी तक शरीर की पर्याय को ही अपनी पर्याय या अपना स्वरूप मान लिया है इस जीव ने। तो कहते हैं इस संयोग संबंध को एक रूप यानी तादात्म्य संबंध रूप से मानता है, और इस प्रकार जीव अज्ञानता से कर्म के उदय से कहा का क्या कहा, अपने स्वयं अज्ञान के कारण शरीर को अपना मानता है। शरीर इसको कहता है कि नहीं थोड़ा मेरे को अपना मान? शरीर तो जड़ है, उसका तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसा कर्म का उदय है उस जाति के परमाणु आते हैं और शरीर की रचना होती है, और वो शरीर का भी कॉन्ट्रैक्ट है। जिस समय वो परमाणु आते हैं, अनंत परमाणु, एक एक परमाणु का जीव के साथ रहने का काल निश्चित है, उसमें एक समय का भी फेरफार होता नहीं है। उसके निश्चित समय पर वो छोड़कर चले जाते हैं, अन्य अन्य परमाणु आते हैं, ये जीव ही उनको अपना मानता बैठता है। तो शरीर को अपना मानता है, इसलिए शरीर के साथ मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा चली थी अपने पहले भी, लास्ट ईयर चली थी, निमित्त और नैमित्तिक, जो सामने निमित्त है उसको तो निमित्त कहते हैं, और यहाँ जो जीव में जो कार्य होगा उसको हम नैमित्तिक कहेंगे। अब यहाँ जो हमने औदयिक भावों की चर्चा की है, वहां सामने क्रोध कर्म का उदय है उसको निमित्त कहेंगे, और जीव में जो क्रोध होता है उसको नैमित्तिक कहेंगे। ऐसे ही शरीर और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत होते हैं। कभी हम इच्छा करते हैं और देखो मैंने इच्छा की और हाथ उठाया, शरीर को मैंने उठाया कि नहीं उठाया, तो ये हाथ का उठना और मेरी इच्छा होना इनका एक काल होता है, तब हम कहेंगे हमें ऐसा लगता है कि ये मैंने कार्य किया। मान लेते अभी यहां पैरालिसिस का अटैक आया और मेरी इच्छा बहुत है हाथ उठाऊं और नहीं उठ रहा है, तो क्यों नहीं उठ रहा? हाँ, वो प्रत्येक द्रव्य की क्रिया अपने से होती है, जब हमारे इच्छा के अनुकूल होती है तो हम मानते हैं मेरे मैंने उठाया। कोई पेशेंट आता है हमारे पास और हमने दवा दी और अच्छा हुआ, तो क्या कहते हैं? देखो मैंने अच्छी दवाई दी, तुम अच्छे हो गए, अच्छा हुआ टाइम से आ गए। और जब आता है और हम दवाई देते हैं और वो भगवान को प्यारा हो जाता है ये भगवान को कुछ प्यारा नहीं होता तो हम क्या कहेंगे? अरे हमने तो बहुत कोशिश की, पर क्या कहे, वो तो भगवान के हाथ में है सर, है ना? जो पहले हमने ठीक किया था तभी भगवान की याद किसी को नहीं आई थी ऐसा ही है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत आते होते हैं। तो ये जीव परद्रव्य का कर्ता मैं ही हूं ऐसा मानता है। एक तो शरीर मैं हूं ये मान ही लिया है, और शरीर मान लेते भी शास्त्र में पढ़ा है तो कहता है तो शरीर भिन्न है मैं भिन्न, परंतु ये मैं करता हूं तब शरीर की सबसे क्रिया होती है, ऐसे मानता है। संबंध होने पर भी उसके साथ कर्ता कर्म संबंध मानता है। देखो इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसको कोई ना नहीं कहता है, परंतु इसने भूल क्या की, कर्ता कर्म संबंध माना। हमेशा कर्ता कर्म संबंध द्रव्य का अपने पर्याय के साथ होता है। क्या कहा अतुल जी? हाँ, कर्ता कर्म संबंध द्रव्यों का अपने अपने पर्याय के साथ होता है। कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को करे ऐसा कर्ता कर्म संबंध तीन काल में नहीं हो सकता। दो द्रव्य मिलकर तो कर्म या कोई एक कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जीव और कर्म मिलकर तो शरीर की रचना करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करते। दो द्रव्य मिलकर कोई कार्य नहीं कर सकते। तो देखो क्या कहते हैं, कर्ता कर्म संबंध मानता है, इसलिए वह यह मानता आ रहा है कि मैं शरीर के कार्य कर सकता हूं। माना है ना हमने? ये हमारी अपनी भूल क्या हो रही थी अनादि से, वो बात यहां बता रहे। हम यहां पंचम काल में जन्मे हैं, तो पंचम काल का कोई भी जीव सम्यक्त्व के साथ जन्मता नहीं है, ये कर्णानियोग का नियम है। क्या कहा? पंचम काल में यहां जो जन्मे हैं जीव, वो जन्म से सारे ही मिथ्या दृष्टि जीव ही है। यहां जन्मने के बाद कोई पुरुषार्थ से सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, सातवें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ कर सकेगा। हाँ बोलो।
मेरा क्वेश्चन है, तो मैं अनादि से मिथ्या दृष्टि जीव हूँ, क्योंकि सम्यक्त्व तो हुआ नहीं है।
हाँ, आप कहते हैं क्या हम अनादि से मिथ्या दृष्टि जीव ही है? ही मत लगाना, क्योंकि सुबह ही हमने देखा था मिथ्यात्व का काल कितना होता है। कोई ऐसा जीव होता है कि उसने पहले सम्यक्त्व प्राप्त किया है और फिर मिथ्यात्व में जाता है, तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल इतना भटकता है। हो सकता है पहले कभी सागरों पहले भी सम्यक्त्व प्राप्त करके मिथ्यात्व में चला गया हूं, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? सब पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जब हम उसके विशेष बातें देखते हैं तो ऐसे भी होता है कि पूर्व में सम्यक्त्व होकर छूट भी जाता है, फिर मिथ्या दृष्टि जैसे अनादि की मान्यता है वैसी इसकी हो जाती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कर्मों की अपेक्षा डिफरेंस होता है कुछ काल के लिए, परंतु मान्यता में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो मिथ्या दृष्टि ही कहलाता है। यानी अभी उसकी मान्यता पूर्ण रूप से मिथ्यात्व जैसी है, अभी यहां जन्म लिया है, वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में पहले गुणस्थान में ही उसने जन्म लिया है, इसके बाद वो पुरुषार्थ से सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। देखो क्या कहते हैं, क्या विचार करता है, मैं शरीर के कार्य कर सकता हूं और जड़ कर्म शरीर आदि मुझको कुछ करता है। यानी ये कर्म ने मेरे मेरा रास्ता अटकाया है, उसका उदय है। हम तो शास्त्र में स्वाध्याय में आना चाहते थे, परंतु क्या करें, अंतराय कर्म आड़ा आ गया। आपको कभी आड़ा नहीं आता अंतराय कर्म? काला होता है कि गोरा होता है, किसी ने देखा है क्या? नहीं? हाँ, ये अंतराय कर्म को कलर होगा कि नहीं होगा? हाँ नियति बे नहीं। हाँ आप क्या कहते दीप्ति जी, कर्म को कलर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ आप क्या कहते हैं? नहीं होगा पुरुषों में। हाँ प्रबोध जी, कर्म को कलर है कि नहीं है? नहीं है। अतुल जी, होगा, होना ही चाहिए। क्यों अंकलाबेन? कर्म क्या है? जड़ है, पुद्गल है, और पुद्गल के हमने लक्षण बांधे थे। क्या है पुद्गल का लक्षण? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसको हम पुद्गल कहते हैं। तो वो हमारे आंखों से नहीं दिखे, परंतु उसमें वर्ण गुण है कि नहीं है? के गुण खलास हुआ उसका। हाँ हाँ, सरला बेन का प्रश्न है, क्रोध का कलर लाल होगा क्या? हाँ, तो क्रोध अभी दो है, एक तो है जीव का भाव जो क्रोध है, और एक है क्रोध कर्म। तो आप बताओ, आपका भाव लाल कलर का है कि पीले कलर का है? बोलो बोलो। जीव का क्रोध है वो लाल पीला नीला होगा कि नहीं होगा? जीव का भाव, जीव अरूपी है, उसके सभी भाव अरूपी होंगे। कर्म रूपी है, उसके सभी भाव रूपी होंगे। तो क्रोध नाम का कर्म है वो लाल पीला हरा रंग वो सब हो गया है उसके। ख्याल में आता है ना? हाँ, तो कर्म में वर्ण हो गए, वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, केवल ज्ञानी उसको जानते हैं। आगे उसमें भी बहुत सारे विस्तार है, अभी क्या करें। हमारे कर्म जो हम कहते हैं ना, एक एक कर्म परमाणु के साथ अनंत अनंत जो हमारे कर्म परमाणु नहीं है, ऐसे बिना बुलाए मेहमान जिसको विश्रसोपचय कहते हैं, एक कर्म परमाणु के साथ अनंत विश्रसोपचय परमाणु चिपके हुए आते हैं उनके स्निग्धत्व रुक्षत्व के कारण। हम जो बांधते हैं कर्म, कितने बांधते एक समय में? अनंत कर्म परमाणु को एक समय में बांधते हैं, और वो प्रत्येक अनंत के ऊपर अनंत अनंत विश्रसोपचय होते हैं। विश्रसोपचय, विश्रसा उपचय, विश्रसोपचय। सुनो सुनो, अभी सुनो, ये परमाणु में ऐसी शक्ति है कि दो चार परमाणु या अनंत परमाणु इकट्ठे होते हैं, जुड़ जाते हैं, उनका स्कंद बन जाता है। तो ये कर्म के परमाणु तो क्यों आए? क्योंकि हमारे राग द्वेष के निमित्त से वो बंधे, बराबर। पुराने कर्मों के उदय में हम नया राग द्वेष करते हैं तो नए परमाणु आकर चिपकते हैं। पुराने कर्मों के उदय में हम राग द्वेष नहीं करेंगे तो नए कर्म नहीं आते। तो क्या है, नए कर्म परमाणु आके फिर जुड़ गए पुराने कर्मों के साथ। परंतु मात्र परमाणु ही नहीं, ओनली कर्म परमाणु ही नहीं हुए, तो क्या हुए? अनंत अनंत विश्रसोपचय उसके साथ जुड़ गए हैं, उनका स्कंद तैयार हुआ है। हमसे उनका कुछ लेना देना नहीं है, परंतु वो चिपके हुए हैं। जैसे आपके कर्म के उदय में ये औदारिक शरीर के परमाणु तो आपने ग्रहण किए, बराबर। फिर ऊपर क्रीम लगाई, तेल लगाया, और आते आते धूल चिपक गई। कौन से कर्म के कारण धूल चिपक गई? हाँ, ये क्रीम के स्निग्ध गुण के कारण। वो धूल चिपकी, वो कर्म के कारण चिपकी है क्या? नहीं ना, वो आपके औदारिक शरीर का पार्ट एंड पार्सल नहीं है। ऊपर जो हम कोई कलर करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कलर से हमें समाधान नहीं है, क्योंकि मैं अरूपी हूं माना ही नहीं है, मैं रूपी हूं और मुझे ये कलर पसंद नहीं है, मुझे कोई और कलर चाहिए, इसलिए फिर वो ये टीवी पर सब इंडिया में बहुत एडवर्टाइजमेंट चलती है। केस का, ये केशों का कलर बदलना है, और जाओ कोई लिपस्टिक का और नेल्स का और क्या क्या, उसमें भी और ये नेल नहीं होगी तो ऊपर और लगाएंगे। तो ये हमने अपने को कभी अरूपी माना नहीं है। ये विश्रसोपचय की बात हो रही थी, एक एक कर्म परमाणु के साथ भी इतने अनंत विश्रसोपचय होते हैं। एक एक औदारिक शरीर परमाणु के साथ अनंत विश्रसोपचय होते हैं। एक एक तेजस शरीर कर्म का, एक एक जो परमाणु है तेजस शरीर का, उसके साथ अनंत अनंत होते हैं। और ये अनंतों का स्कंद जो है वो यहां है, फिर भी वो हमारे इंद्रियों के द्वारा नहीं दिखता। कोई जीव मरकर अन्य भव में जाता है, उसके कर्म तो जाते ही उसके विश्रसोपचय के साथ वो चला जाता है। इतना बड़ा समूह होकर भी हमारे आंखों को नहीं दिखता है, ख्याल आया ना। फिर भी जो होता है वो शास्त्रों में उसका वर्णन आता है। विश्रसोपचय देखो क्या कहते हैं, तत्व विचार करते करते जीव को ऐसा लगता है कि यह मेरी भूल है। देखो, जब जीव तत्व सुनता है, सच्चे तत्व को सुनता है, तब वो विचार करने लगता है, अरे मैंने तो आज तक ऐसा माना था। जब हमने पहली बार तत्व सुने तो हम क्या समझे कि अरे बचपन से हमने धर्म किसको माना था? मंदिर में जाना है, उपवास करना है, यात्रा करना है, और फिर पूजाएं करना है, मुनियों को आहार देना है, ये सब यही धर्म है। परंतु जब तत्व सुनते हैं तो पता चलता है, नहीं नहीं, यहां कुछ साइंटिफिक अलग बात है। ये तत्व जो हम समझते हैं, अपना स्वरूप समझते हैं, विचार करने के, अपने बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो निर्णय चलता है, ये कोई अलौकिक बात है जो हमने आज तक सुनी नहीं थी। जब पहली बार सुनते थे, अरे मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है वाक्य, तो क्या विचार करता है कि यह मेरी भूल है। कौन सी? अब तक जो मैं शरीर ही मैं हूं, उसका कर्ता मैं हूं मानता था, यह मेरी अपनी भूल है। मैं जीव तत्व हूं और शरीर तथा जड़ कर्म मुझसे सर्वथा भिन्न, कोई संबंध नहीं मेरा, सर्वथा भिन्न अजीव तत्व है। मैं अजीव में और अजीव मुझ में नहीं है। आप कहेंगे जीव में ही कर्म है ना, जहां जीव है वो जीव में कर्म है कि नहीं है?
नहीं,
नहीं है। आप कहते हैं और आप कहते हैं, तो इतनी बात बंद हुआ और उदय हुआ और ये बात चल रही है और आप कहते नहीं है, ऐसा क्यों? एक क्षेत्र देखो, आकाश के जिस क्षेत्र में यह जीव है उसी आकाश क्षेत्र में कर्म भी है, उसी आकाश क्षेत्र में शरीर के परमाणु भी है। वहां और कौन कौन से द्रव्य है बहन? धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, सभी छह द्रव्य यहाँ खचोखच भरे हुए है। और मैं क्या मान रहा हूँ? ये शरीर मैं हूँ, ये रूपी जो दिख रहा है वो मैं हूँ। तो इस जीव ने अभी तक छह द्रव्यों को भी नहीं माना है। छह की बात छोड़ो, उसने पुद्गल और जीव ये दो द्रव्य भी नहीं माने अभी तक, क्योंकि मैं तो अरूपी हूँ, परंतु इसने क्या माना है? ये जो दिख रहा है वह मैं जीव हूँ। तो ना उसने जीव को जाना ना पुद्गल को जाना, छह द्रव्य को ही जानने में अभी भूल चल रही है उसकी। तो कहते हैं मैं अजीव में नहीं हूँ, अजीव मुझ में नहीं है, इसलिए मैं अजीव का कुछ नहीं कर सकता। ये मैं उसमें क्यों नहीं हूँ, ये बात शाम को आने वाली है, वहां तो विस्तार से चर्चा चलेगी। मैं अपने ही भाव कर सकता हूँ तथा अजीव अपने भाव कर सकता है। भाव करना यानी उसके पर्याय होना, अजीव की यानी पुद्गल की पर्याय, पुद्गल में उसके अपने कारण होती है, और मेरी यानी जीव की पर्याय मेरे अपने में मेरे अपने कारण होती है। शरीर की जो कोई अवस्था होती है वो शरीर में शरीर के अपने कारण होती है, और मेरी यानी जीव की जो अवस्था है वो मेरे में मेरे अपने कारण होती है। कर्म की जो अवस्था है वो कर्म में कर्म के कारण होती है। हमारा आपस में एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि एक क्षेत्रावगाह संबंध का नाम सुनकर हम संबंध को स्थापित करना चाहते हैं, परंतु संबंध शब्द ही दो भिन्नता की बात सूचित करता है। संबंध दो भिन्न द्रव्य में होता है कि एक ही द्रव्य में हम उसके संबंध की बात करते हैं? भाई बहन संबंध, पति पत्नी संबंध, दो भिन्न व्यक्ति है ना वहां पर, तभी तो हमने कहा संबंध है। वैसे एक क्षेत्र में अवगाह सुपर इम्पोज है एक क्षेत्र में, फिर भी प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी एंटिटी, अपना अपना अस्तित्व भिन्न भिन्न है। तो ये भिन्न अस्तित्व हमने अभी तक समझा ही नहीं था। इस प्रकार जिज्ञासु आत्मा, कौन कहा? जिज्ञासु आत्मा, जिसको स्वयं का स्वरूप जानने की ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है और सामने सहज रूप से ऐसा निमित्त बन जाता है, उसके कोई ग्रंथ की उपलब्धि होती है, कोई ज्ञानी जीव उसको मिलता है उपदेश देने वाला, कैसे ही करके जिज्ञासु जो है समझना चाहता है, प्रथम राग मिश्रित विचार के द्वारा जीव अजीव तत्वों का स्वरूप जानकर। ये राग मिश्रित विचार क्यों कहा? ये जो विकल्पात्मक भूमिका है ना, विकल्पात्मक भूमिका क्या है? मैं जीव हूं, ये शरीर अजीव है, ये राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो अनादि अनंत जीव तत्व हूं। ये सारे जो भेद रूप विचार चलते हैं उसको कहा है राग मिश्रित। यह निश्चय करते हैं कि अपने में जो कुछ विचार विकार होते हैं वे अपने ही दोष के कारण होते हैं। देखो पहले हमें क्या स्वीकार करना है, विकार अपनी पर्याय में है कि नहीं है? नहीं तो मैं सर्वथा शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, बस हो गया, विकार मेरे में है ही नहीं, ये तो वो स्वच्छंद हो गया। पहले क्या स्वीकार करता है? विकार मेरे पर्याय में है, अज्ञान और राग द्वेष है और मेरे अपने कारण हो रहे हैं, ये पहले वो स्वीकार करता है। इतना जानने पर उसे यह भी ज्ञात हो जाता है अविकारी भाव क्या है। अविकारी भाव ने अभी जो अपने आत्मा के लक्ष्य से जो वितराग भाव प्रकट होगा उसको कहते हैं अविकारी भाव। इस प्रकार विकार भाव, क्या लिखा है वहां ब्रैकेट में विकार भाव के आगे? हाँ हाँ, पुण्य पाप आश्रय और बंध। पुण्य को भी विकार कहा हो, क्या वो अविकार है? जब वितराग भाव होता है तो पुण्य पाप दोनों छूटकर वितराग भाव होता है कि पुण्य को साथ लेके जाते हैं भगवान? मोक्ष में जाना है, थोड़ा पुण्य साथ में ले जाए कि नहीं ले जाए, तो वहां सुख कैसे होगा? क्यों भाई, थोड़ा पुण्य साथ में ले जावे कि नहीं ले जावे? हमें जो अभी सुख हो रहा है वो पुण्य के उदय में हो रहा है कि नहीं? जी हाँ, तो सिद्धों को भी थोड़ा और ज्यादा सुख है, तो उनको थोड़ा
स्वभाव में ही सुख है।
हाँ, और हमारा सुख हाँ, हमारा सुख पुण्य के उदय में है और उनका सुख स्वभाव में। हमारा भी सुख स्वभाव में है और हमने माना है कि पुण्य के उदय में, पुण्य के उदय में अनुकूलता मिलती है, परंतु वो अनुकूलता में सुख है ही नहीं है। हमने मान लिया है वो हमारी कल्पना है, वो असत भाव है, हमारा असत कल्पना है। देखो, विकार भाव पुण्य और पाप दोनों को कहा है ने? आश्रव और बंध दोनों ही विकार भाव है, तथा अविकार भाव इन्हें कौन से दो तत्व कहे? संवर और निर्जरा। और मोक्ष उसका स्वरूप वे जिज्ञासु आत्मा निश्चित करते हैं। सात तत्वों का स्वरूप जानकर पहले में पहले अपने बुद्धि में उसको निश्चित करते हैं, निर्णय करते हैं, ऐसे ही है इसका निर्णय करना। ये धर्म की शुरुआत के पहले जीव क्या करना, लोग पूछते हैं ना कि अभी हमें क्या करना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल बताओ। ये प्रैक्टिकल है कि जो हमने तत्वों के नाम सीखे हैं, उसके लक्षण सीखे हैं, उसका स्वरूप जाना है, अभी अपने विचारों में निर्णय करना है कि ये जो हमने जाना है वो ऐसा ही है क्या अन्यथा है। क्या हमें आश्रव बंध पुण्य पाप के भाव है, विकारी भाव है, राग द्वेष के भाव है, क्या हमें दुख रूप लगते हैं कि शास्त्र में कहा है इसलिए हम दुख रूप मानते हैं? ये अपने बुद्धि के द्वारा निर्णय होना, ये सबसे महत्व की स्टेप है और यही प्रैक्टिकल है, और कोई प्रैक्टिकल नहीं है। कैसे बैठना, कैसे उपयोग को खींचकर अंदर ले जाना, ये कोई वहां धमाधमी कुछ नहीं करनी है, तत्वों का विचार ही करना है। वो कैसे करना है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, पहले राग मिश्रित विचारों के द्वारा इन तत्वों का ज्ञान करके, ये जो सात तत्व मूलभूत सात तत्व है प्रयोजन भूत, इसका पहले ज्ञान करेंगे। फिर जब जीव उन भेदों की ओर का लक्ष्य दूर करके अपने त्रैकालिक पारिणामिक भाव का, ज्ञायक भाव का यथार्थ आश्रय लेते हैं, क्या कहा? अब ये जो चार पर्याय रूप भाव है उसका भी लक्ष्य दूर करके पारिणामिक भाव का आश्रय लेगा। अभी अपना समय हो चुका है, पारिणामिक भाव का आश्रय लेने के लिए किसी के पास समय नहीं होता, वैसे अपने भी उसकी चर्चा के लिए भी अभी समय बाकी नहीं है, इसलिए अभी पारिणामिक भाव का आश्रय हम कल करेंगे। जैसे आज तक कल पर हमने सभी बातें डाली है और ये महत्व की बात रह जाती है ना, अभी उसकी चर्चा कल करेंगे। बोलो चौबीसो भगवान की जय। Thank you.